राजवंश फैमिली की सगाई तोड़ने के बाद आयशा अपने घर पर आई और उसने सुसाइड करने की धमकी दी। उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी सबको बता दी थी। आयशा की इतने ऊपर से कूदने से भले ही उसे कुछ ना हो, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। उसकी बातों से मजबूर होकर राधिका को शादी की बात करने के लिए राजवंश विला आना ही पड़ा। सुबह जो भी हुआ था उसकी वजह से उर्वशी अब तक नाराज थी। उसने राधिका और आयशा को घर के अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर ही खड़ी थी। इशिका को इस बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंची। राधिका के बाद अब आयशा इशिका को ब्लैकमेल करने लगी कि वो जाकर वसुधा से बात करे और उसे इस शादी के लिए मनाए। इशिका के मना करने से पहले ही राधिका ने इशिका को मना कर दिया और ये कहा कि भले ही वो आदर्श की बेटी है, लेकिन उसे आयशा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इशिका सच्चाई जानती थी, इसलिए उसके मुंह से यही निकला कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। इशिका की बात सुनकर राधिका चौंक गई, फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने कभी आदर्श को अपना डैड नहीं माना, लेकिन फिर भी इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम परेशान मत हो और अंदर जाओ। इशिका ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और राधिका से कहा, मेरे बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ थोड़ी देर और खड़ी रहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज़ जिद मत कीजिए मिसेस सिंघानिया और गाड़ी के अंदर जाकर बैठिए। इशिका जानती थी कि उर्वशी को समझाना आसान नहीं है और वो इस मामले में वसुधा की मदद भी नहीं लेना चाहती थी। आयशा ने भी कुछ कम गलतियां नहीं की थीं। इतना सब कुछ करने के बाद राजवंश फैमिली के 2% शेयर अभिमन्यु के पास चले गए थे, वो भी आयशा की गलती की वजह से। इस बात की वजह से वो उससे और नाराज़ हो गए थे। इशिका ने गुस्से से एक नज़र आयशा की तरफ देखा क्योंकि वो राधिका को आराम करने का नहीं कह रही थी। इस बीच किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा निवेदिता उनकी तरफ आ रही है। निवेदिता राधिका के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, आप जरूर मिसेस सिंघानिया होंगी। जब घर पर गेस्ट आते हैं तो उन्हें इस तरह बाहर दरवाजे पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए अंदर आइए मैडम। और आप कौन हैं? राधिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि उसने निवेदिता को आज पहली बार देखा था। मैं मिसेज राजवंश की केयरगिवर हूँ, निवेदिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राधिका ने कुछ भी कहने से पहले इशिका की तरफ देखा। इशिका पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि वसुधा ने ही निवेदिता को यहाँ भेजा है। तब उसने कहा, आप प्लीज़ अंदर आइए। भले ही वसुधा आयशा को कितना भी नापसंद करें, लेकिन वो मिसेज राधिका सिंघानिया को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। राधिका ने भी उनका स्नेह देखकर कोई बहस नहीं की और निवेदिता के पीछे चल दी। वसुधा ने राधिका की खातिरदारी में सबको लगा दिया था, तो मजबूरन उर्वशी को भी इसमें शामिल होना पड़ा। कुछ ही देर में वो सब मेन विला के लिविंग रूम में इकट्ठा थे। अंदर आते ही उर्वशी पूरे घमंड के साथ सोफे पर बैठी और राधिका की तरफ देखकर कहा, मैंने आपको मिलने से मना किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि आप मेरे दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। उर्वशी ने जानबूझकर राधिका को बैठने तक का नहीं कहा। उर्वशी की इस बदतमीजी का इशिका जवाब देने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसके इरादों को समझते हुए आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा, वो मेरी होने वाली सास हैं, तो कुछ भी ऐसा वैसा कहकर उनकी इंसल्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत। इशिका को अब आयशा पर और भी गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों के सामने राधिका की इंसल्ट की जा रही थी, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। उन दोनों की आंखों ही आंखों में इस अनबन को राधिका ने महसूस किया और हल्का खांसते हुए वो सोफे पर जाकर धीरे से बैठ गई थी। उर्वशी ने फिर से राधिका पर निशाना साधते हुए कहा, आप काफी एलिगेंट हैं, मैंने सुना है कि आपने ही इशिका को बड़ा किया है। इशिका की एलिगेंस और एटिकेट्स देखकर समझ में आता है कि आप ही इसे पाल सकती हैं। उर्वशी बातों की बातों में राधिका को ताना दे रही थी। राधिका ने इसे काफी सपोर्टिंग ले लिया और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। उर्वशी उसे गुस्से में काफी कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन राधिका ने बीच में ही हल्का खांसते हुए कहा, मिसेज राजवंश, यहाँ मैं बच्चों की बात करने के लिए आई हूँ, मुझे लगता है हमें अकेले में बातें करनी चाहिए, इसी में हमारे बच्चों की भलाई है। उर्वशी उनसे बात करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों से राधिका का मतलब नक्श और आयशा से था, तो वो मना भी नहीं कर पाई। उर्वशी ने पहले भी काफी बार राधिका की तारीफ सुनी थी। वो दिल्ली की एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। अभिमन्यु की वजह से दिल्ली में उनका बिजनेस कुछ खास फैला हुआ नहीं था। उर्वशी ने इसे एक मौके की तरह लिया और सार्कास्टिकली मुस्कुराकर बोली, चलो देखते हैं तुम्हारे पास बात करने को क्या है। उसके बाद उर्वशी ने वहां मौजूद हाउस हेल्पर्स की तरफ देखा और कहा, तुम लोग अब बाहर जा सकते हो। राधिका ने भी आयशा और इशिका की तरफ देखकर कहा, तुम लोग भी अब बाहर जाओ, हमें अकेले में बात करनी है। आयशा को बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो बिना किसी सवाल के बाहर चली गई। वहीं इशिका के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे। इशिका राधिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन राधिका के इशारा करने पर उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर आने के बाद वो दोनों लिविंग रूम के आगे बने पोर्च में खड़ी थी। इशिका बार बार लिविंग रूम के अंदर देख रही थी। इशिका परेशानी से मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा, राधिका आंटी क्यों आयशा की वजह से खुद को मुसीबत में डाल रही है। सोचते हुए अचानक इशिका की नज़र आयशा पर गई। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो आराम से मोबाइल में लगी हुई थी। इशिका आयशा के पास गई और हल्के गुस्से में बोली, शर्म तो बिल्कुल नहीं है ना तुम्हारे मुंह पर? अंदर में से सिंघानिया तुम्हारे लिए पता नहीं उस औरत की न जाने कैसी कैसी बातें सुन रही होगी, और तुम यहाँ अपने मोबाइल में देखकर मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मुझे उनकी फिक्र है, और उससे ज़्यादा वो मेरी फिक्र करती है। तभी आज मेरे लिए उस कमरे में बैठकर आराम से बात करके सब सॉल्व करना चाहती है। वो बस अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही है, तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आयशा ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो कुछ पल रुकी और इशिका का मजाक बनाते हुए बोली, वैसे तुम्हें कभी इस फीलिंग का एहसास नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो उनसे इतनी नफरत करती हो कि उन्हें मॉम तक कहकर नहीं बुलाती। इशिका की बातें सुनकर गुस्से से इशिका की मुठ्ठियाँ कस गई थी। इशिका गुस्से से बोली, तुम अपनी। आयशा ने इशिका की बात को पूरा नहीं करने दिया और बीच में ही बोली, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। आज जब मैं रोते हुए घर पहुँची तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हो गई और तुरंत उन्होंने यहाँ आने का डिसीजन लिया। वो आज कुछ भी करके राजवंश फैमिली को मना कर ही रहेगी। इशिका भी गुस्से में जवाब दिया, राजवंश फैमिली इंडिया की अमीर परिवारों में से एक है। मिसेस सिंघानिया उन्हें क्या ऑफर करेगी जिसकी वजह से वो मान जाएंगी? सब कुछ तो है उनके पास। आयशा ने महसूस किया इशिका जो कह रही थी वो सच था। आयशा ने बिना किसी भाव के सिर हिलाकर कहा, फिर तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें तब तक अपना सिर झुकाकर खड़ा रहना होगा जब तक मिसेज राजवंश मान नहीं जाती। उनके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। इशिका को आयशा की सोच पर अफसोस हो रहा था। तभी आयशा उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जबकि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम उनका एहसान चुकाने के लिए एक बार बड़ी दादी से बात नहीं कर सकती, ताकि वो इस मामले को सुलझा सके?
इशिका को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया कि वो आयशा का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने हमेशा राधिका को अपनी आइडियल माना और आज उनका सिर झुकता देखकर उसे बुरा लग रहा था। इशिका ने सख्ती से कहा, ये मैं पहले से जानती थी कि नक्श से अपनी शादी टूटने नहीं दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके लिए तुम जाकर अपनी कमज़ोर और बीमार माँ को परेशान करोगी। इशिका आयशा से कुछ कदम दूर हो गई। उसकी नज़रें लिविंग रूम पर टिकी हुई थी, जहाँ लगभग 40 मिनट बाद मिसेस सिंघानिया बाहर निकली। राधिका के बाहर आते ही इशिका जल्दी से उनके पास गई और उन्हें संभालने लगी। इशिका उन्हें कुछ पूछ पाती उससे पहले आयशा जल्दी से दौड़कर उनके पास आई और इशिका को साइड करते हुए खुद उनका हाथ पकड़ लिया। वो जल्दी से बोली, मॉम अंदर क्या हुआ था? क्या मिसेज राजवंश ने शादी के लिए हाँ कह दी है? ऐसा लग रहा था जैसे राधिका काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। राधिका के हाँ कहते ही आयशा उनके गले लग गई। वो खुश होते हुए बोली, मुझे पता था मॉम आप कर लेंगी। आई रियली लव यू सो मच। थैंक यू सो मच मॉम। पहले जब आयशा राधिका के गले लगती थी तब वो प्यार से उसके बालों को सहलाती थी, लेकिन आज उन्होंने आयशा को खुद से अलग कर दिया। फिर उन्होंने इशिका की तरफ देखकर धीरे से कहा, इशिका क्या तुम हमें बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं चलोगी? इशिका राधिका का इशारा समझते ही उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगी। बाहर चलते हुए राधिका ने इशिका से कहा, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इस बात को मैं समझती हूँ, लेकिन ये फिर मत कहना कि आदर्श तुम्हारे पिता नहीं है, राधिका ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहा, क्योंकि इशिका के जन्म होने से पहले मालविका ने अपनी प्रेगनेंसी साबित करने के लिए जो भी टेस्ट करवाए थे उसमें यही साबित हुआ था कि वो बच्चा आदर्श का ही है। इशिका ने सख्ती से उनकी तरफ देखा और जवाब में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मेरे डैड नहीं है मिसेस सिंघानिया, मेरे पास उसके सबूत हैं। और वो क्या? राधिका ने हैरानी से पूछा। आयशा उनके पीछे ही आ रही थी। जब उसने इशिका और राधिका की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। आयशा सच्चाई जानती थी, वो नहीं चाहती थी कि राधिका या इशिका में से किसी को भी इशिका का राधिका की बेटी होने का सच पता चले। वो जल्दी से राधिका के पास आकर बोली, मॉम वो मैं। आयशा की बात पूरी होने से पहले ही राधिका ने उसे बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें जो भी कहना है वो घर पर चलकर कहना, यहाँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आयशा को डांटने के बाद राधिका ने इशिका की तरफ देखकर कहा, हाँ तो अब मुझे ठीक से बताओ कि तुम क्या कह रही थी इशिका? इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। आप चाहो तो मालविका को घर से निकाल सकते हो, ये सब उसने ड्रामा किया था। एक्चुअली मैं आदर्श सिंघानिया की बेटी नहीं हूँ। इशिका राधिका को आगे बता पाती उससे पहले राधिका बेहोश हो गई थी और इसी वजह से इशिका बुरी तरह घबरा गई। मिसेस सिंघानिया, चिल्लाते हुए इशिका तुरंत उन्हें संभालने लगी। आयशा भी घबरा गई थी। उस वक्त इशिका को कुछ नहीं समझ आया और वो तुरंत आयशा की मदद से राधिका को वसुधा के विला में ले गई। इशिका जानती थी कि वसुधा के विला में एनी टाइम डॉक्टर रहते थे। डॉक्टर ने जल्दी से राधिका का चेकअप किया और फिर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ी थकी हुई थी, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के बताने पर इशिका ने राहत की सांस ली। वो परेशान लग रही थी तो वसुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अभी इसकी उम्र ही क्या है जो तुम इसके लिए घबरा रही हो। वैसे बहू, तुम्हारी माँ बहुत पतली है, उन्हें बोलो कि ठीक से खाया पिया करें। वसुधा अभी भी राधिका को इशिका की माँ समझ रही थी। इशिका उनकी ये गलतफहमी दूर करती उससे पहले आयशा बीच में चिढ़ते हुए बोली, दादी वो मेरी मॉम है, इशिका की नहीं। वो मेरी बहू की माँ है, तुम गंदी लड़की बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। आयशा उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए उसने गुस्से में इशिका को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम सबको यही बताती हो कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम है। थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि शर्म तो तुम्हें भी नहीं आती है। इशिका ने इस वक्त उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने डॉक्टर से पूछा, इन्हें होश कब तक आएगा? लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ये जितना आराम करेंगे इनके लिए उतना ही अच्छा है, डॉक्टर ने जवाब दिया। इशिका ने सिर हिलाया और फिर वसुधा से पूछा, दादी क्या कुछ देर के लिए मिसेस सिंघानिया यहाँ पर रख सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर ये मेरी बहू की माँ है तो यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती, वसुधा ने खुशी से कहा। किसी और को राधिका के वहां रुकने से दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आयशा को दिक्कत थी। उसने झट से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है बड़ी दादी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, मैंने डैड को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। आयशा को समझाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में आदर्श वहां पर पहुंच चुके थे। वहां आते ही आदर्श दौड़कर राधिका के पास गया। इशिका ने आदर्श के चेहरे की तरफ देखा और अपने मन में कहा, तो क्या अभिमन्यु का शक सही है? हो सकता है कि मैं सिर्फ राधिका सिंघानिया की बेटी हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे असली पिता कौन है? मिसेस सिंघानिया तो इसके बारे में जरूर जानती होगी। क्या मुझे डायरेक्ट जाकर उनसे पूछना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट जाकर पूछना सही नहीं होगा। मिसेस सिंघानिया से मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन आदर्श सिंघानिया से पूछ सकती हूँ। हाँ, मुझे इन्हीं से पूछना होगा। अपने मन में सोचते हुए अचानक इशिका के कदम आदर्श की तरफ बढ़ने लगे। क्या इतने लोगों के सामने इशिका हिम्मत जुटाकर आदर्श से सच पूछ पाएगी?